हरे कृष्ण
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोले भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवकाचार अष्टोत्तरष्ट हिट डिवाइन ग्रेस ये श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कान फाउंडाचार्य श्री द होवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवकाचार अष्टोत्तरष्ट हिट डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सदगुरु स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार से दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौ निताय की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्रीनाथ भगवान की जय। यशोदा मैया की जय। दामोदर भगवान की जय। ग्रंथराज सिंह भागवतम की जय। इस्कान राधा गोपीनाथ भक्तविंद की जय। गौर प्रेमानंद आलगुरी सुमल डिवोटिस आलगुरी सुमल डिवोटिस आलगुरी सुमल डिवोटिस श्री गुरु एन गोरा
हरे कृष्णा। तो हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमारे बीच हिज ग्रेस ब्रजेंद्र नंदन प्रभु यहाँ पे उपस्थित हैं। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु इस्कॉन के बहुत ही सीनियर भक्त हैं और 1984 में वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए दिल्ली में और उसके उपरांत वो मुंबई में आए जुहू में। उनको ट्रेनिंग दी गई शुरू में जस्ट 6 महीने में और तुरंत बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु जी को दिए गए। सबसे पहले उन्होंने जुहू में भक्ति कला क्षेत्र पीआर गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निर्वहित किया। उसके उपरांत फिर इन्हें इस्कॉन पुणे में टेंपल प्रेसिडेंट के रूप में भेजा गया। 1986 से 90 तक इस्कॉन पुणे में रहे टेंपल प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद जब न्यू दिल्ली में पंजाबी बाग के लिए जमीन आया तो वहां पे महाराज हिजोरीनाथ गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रभु जी को वहां पे आमंत्रित किया और वहां पे वो टेंपल प्रेसिडेंट के रूप में पंजाबी विभाग में वहां पे सेवारत रहे। और उसके बाद जैसे ही पंजाबी विभाग टेंपल ओपन हो गया तो
ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर
उसके बाद ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में प्रभु जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे सेवारत सेवा के लिए वहां पे उनको आभूषित किया गया। और उसके बाद फिर वहां से इस्कॉन कम्युनिकेशंस सेवा में वो रत हैं जहां पे वो पूरे के पूरे भारत में इस्कॉन रिलेटेड सभी कम्युनिकेशंस को देख रहे हैं और जो भी हमारे इस्कॉन के प्रधानमंत्री से संबंधित राष्ट्रपति से संबंधित और भी जो भी बड़े बड़े कम्युनिकेशंस हैं गवर्नमेंट और पीआर सब ब्रजेंद्र नंदन प्रभु के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा विशेष सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच हैं और वो हमें भागवतम क्लास के द्वारा अपना संग देंगे। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरे कृष्ण। ये सब प्रभुपाद जी की ही देन। प्रभुपाद जी और जो वर्तमान गुरु महाराज जी हैं सब उनके और वैष्णव का आशीर्वाद से ही सेवा में हम लगे हुए हैं। और कल आपके जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं कल उनसे मिले एकनाथ शिंदे जी से। कल ही मुलाकात है शाम को 4 बजे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 13 श्लोक संख्या 60 और इस अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इति उक्त्वा अथ आरुहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बरु युधिष्ठिर वचः तस्य हृदि कृत्वा अजहात शुचः। इत्युक्त्वा थारुत स्वर्गम नारद सह तुम्बरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुष। इत्युक्त्वा थारुत स्वर्गम नारद सह तुम्बरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुष। इत्युक्त्वा थारुत स्वर्गम नारद सह तुम्बरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुष। माताजी, लेडीज, इति इस प्रकार उक्त्वा संबोधित करके अथ तत्पश्चात आरुहत आवरण किया स्वर्गम अंतरिक्ष में नारदः महर्षि नारद सह के साथ तुम्बरु तंबूरा युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने वचः उपदेश तस्य उनका हृदय कृत्वा हृदय में रखकर अजहात त्याग दिया शुचः सारा श्लोक। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की ध्यान से सुनेगा। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया जिससे वे सभी शोकों से मुक्त हो गए। तात्पर्य श्री नारद मुनि शाश्वत अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक श्रेय प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पूर्व में ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष यात्री का पद प्राप्त हुआ था, अतएव उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें श्री नारद मुनि के चरणों का पालन चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः श्री नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हों उन्हें सर्वप्रथम धार्मिक बनना होगा और श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चैचुलमृतम इन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस समय जो प्रसंग चल रहा है और इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, उसके बाद अगले अध्याय में अलग प्रसंग शुरू हो जाएगा। एक कंक्लूड हो रहा है कि ये श्रीमद् भागवतम के जितनी भी कथा है प्रसंग है उन सबको श्रवण करने के बाद उन कथा का क्या रहस्य है, हमें क्या शिक्षा लेनी है, ये ग्रहण करना चाहिए। कथा सुनने का यही अर्थ है कि हम जब कथा सुने तो जो सुना उस पर हम मनन करें, विचार करें और उससे जो तत्व जो शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये जो प्रसंग है आप सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए और आप सबको मालूम है कि कितने लोग मारे गए, महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सब पुत्र वो भी मारे गए, लेकिन भगवान की सुरक्षा कवच के साथ उनके भक्त पांच पांडव ही बचे। तो जिसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हो उसकी सुरक्षा इस महाभारत से पता चलता है। जबकि अवसर था शकुनी के कहने पर, दुर्योधन भी गया था भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारिकाधीश के पास द्वारिका में, तो दुर्योधन पहले पहुंचा था। वो अहंकारी था और अहंकार के चलते वो भगवान श्री कृष्ण जब सो रहे थे तो वो सिरहाने खड़ा हो गया। अहंकार बहुत खतरनाक चीज होती। जब भगवान के परम भक्त अर्जुन वहां पहुंचे तो भक्त है, भक्त तो हमेशा अपने आप को सेवक ही समझता है, दासी समझता है। तो क्योंकि दास की जो स्थिति होती है वो चरणों में होती है, तो हमें शिक्षा लेने से तो सिर्फ दास लिखने से हम दास नहीं बन जाते। हम अहंकार रहित होकर के हमें दासता स्वीकार करनी चाहिए और गुरु और जो आचार्य है महेश्वर के चरणों में स्थान रखना चाहिए। तो अर्जुन भगवान के चरणों में के सामने खड़े हो गए, सिरहाने दुर्योधन खड़ा था और चरणों पे अर्जुन खड़े थे। तो स्वाभाविक है, आप सबका अनुभव है कि जब नींद खुलती है तो हम पहले सामने देखते हैं, यही होता है ना, सामने देखते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंख खुली तो सबसे पहले किसको देखा, अर्जुन को देखा, और देखा रे अर्जुन तुम, भगवान कुछ और बोलने वाले थे कि दुर्योधन जो है बीच में बोल पड़ा कि हे द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। तब भगवान मुड़ के देखते अच्छा आप भी आए हो, मकसद साफ था, वो दोनों भगवान कृष्ण की सहायता मांगने के लिए गए थे। तो भगवान कहा कि हमारी नजर सबसे पहले अर्जुन में पड़ी है, तो सबसे पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, भगवान बोले कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहे जिससे बड़ी पावरफुल सेना है ही नहीं किसी पास, तो एक तरफ हमारी सेना रहेगी वो लड़ेगी, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन मांगने का सबसे पहले अधिकार किसको है, अर्जुन का। भगवान अर्जुन को संदेश जो देना चाहते थे दे दिए, समझदार को इशारा ही काफी था, अर्जुन भक्त था, और भक्त कृष्ण के अलावा उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भक्त जानता है कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो कोई बाल माका नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं सिर्फ आपको चाहता हूं, आप मेरे साथ रहिए, लड़े या न लड़े इसके बाद कोई लेना देना नहीं। जैसे ही अर्जुन कहा तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, पहले तो डर रहा था, खुश हो गया, हाँ हाँ द्वारकाधीश आप उनके साथ रहे, लेकिन जो नारायणी सेना है मुझे दे दीजिए। उसने वो सोचा कि नारायणी सेना तो लड़ेगी, एक तो लड़ेंगे नहीं, तो इनको अपने साथ रखने फायदा ही क्या है। देखिए उसके दिमाग में एक चढ़ रहा था, और भगवान मुस्कुराए कि भगवान जानते हैं कि जिसके पक्ष में मैं रहूंगा हमारी सेना उसके विरोध कैसे लड़ेगी उसे भी रहस्य है, पहले तो मूर्खता था ही। अब जब दुर्योधन गया वापस तो शकुनी कर्ण दुशासन सब इंतजार कर रहे थे, इतना खुश था, अरे अर्जुन बड़ा बुद्धू निकला, पहले तो मामा ने कहा कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अर्जुन पहले मांगे तो उसे इतना बुद्धू है, वो अर्जुन कृष्ण को मांग लिया जबकि लड़ेगा ही नहीं, हम तो पूरी नारायणी सेना मांग जो युद्ध करेगी। तब उसका सपनी का माता ठनका कि इसीलिए मैं कहता हूं तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है, अरे मैंने इसके लिए तोड़ी भेजा था, मैं तो कृष्ण को अपने पक्ष में लाने के भेजा था, क्योंकि मेरी काट अगर किसी के पास है किसके पास है, कृष्ण के पास। शकुनी जो भी चाल चलता था उसकी काट किसके पास होती थी, कृष्ण के पास, इसीलिए मैं तुमने भेजा था कि अगर कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया तो विजय निश्चित है, लेकिन अपना माता के तुम मूर्ख हो तुम कब सुधरोगे कब समझोगे मेरे समझ नहीं आ रहा है, यही सत्य है। तो सब कथा आप लोग जानते हैं, पूरा महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद महाराजा युधिष्ठिर राजा बने, और राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी युधिष्ठिर महाराज के साथ ही रहे महल में, ऐसा दृश्य है, ये जो प्रसंग है इस तरह से है। तो विदुर जी जब आए वापस तो देखा कि यहां क्या हो रहा है, और सीधा किसके पास गए? धृतराष्ट्र के पास। कहे तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, जिन उनके हाथों से, भीम के हाथों से तुम खाना खा रहे हो, जो तुम्हारे सबसे पर दुर्योधन को मार डाला। तुम्हें तो ऐसे जो अपने बेटियों को मारे, 100 बेटों को मारे, और उनके हाथ तुम खाना का धिक्कार तुम्हें, तुम्हें तो जगत छोड़ के चले जाना चाहिए। क्योंकि विदुर जी चाहते थे कि कम से कम अब तो माया मोह छोड़े है ना, और जा करके भक्ति करके कुछ लाभ उठाए। तो इसे शिक्षा मिलती गृहस्थी कितनी मकर जाल में आदमी फंस जाता है कि इतना होने के बावजूद भी छोड़ नहीं पाता। बड़ी शिक्षा है इसके पीछे के श्लोक में, उन्होंने बहुत शिक्षा है कि तुम कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो, उनके हाथों से कर हो, जो जिनके हाथों से तुम्हारे बेटे मारे गए, सोचने तो तुमसे ज्यादा निकृष्ट आदमी कोई नहीं है। कि आपको तो छोड़ करके चले जाना चाहिए, अरे हिमालय में जाए, तब प्रभु का ध्यान करे, भक्ति करे, कि सब कुछ उनके हाथ में है। बहुत बड़ी शिक्षा देते हुए उनको समझाया, ये बात धृतराष्ट्र के समझ में आ गई। तो धृतराष्ट्र तैयार हो गए विदुर जी के समझाने पर कि ये सत्य हमको जाना चाहिए। राज्य का लालच इतना होता है कि वो खुद राजा बने रहने के लिए और अपना उद्धारी अपने प्रिय बेटे को बनाने के लिए इतना बड़ा युद्ध करा दिया, सब मारे भी गए, लेकिन फिर भी राजा का जो सुख होता है उसको छोड़ नहीं पा रहे थे धृतराष्ट्र। सोचने वाली बात, इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें समझना चाहिए हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करना। तब धृतराष्ट्र जब चलने लगे तो माता गांधारी, गांधार नरेश की पुत्री गांधारी, बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही विद्वान थी, उनके अंदर भक्ति का पूरा होता है, इसीलिए बीच में समझाती रहती थी। और जब उनकी शादी तय हुई, उनको पता चला कि मेरा पति जन्म से अंधा है, तो उनकी सुंदर आंख होते भी रेशम की पट्टी लगा ली थी। ऐसी पतिव्रता स्त्री कहां में, पहली बात तो कोई स्त्री शादी नहीं करेगी, फिर अंधा उसके साथ क्यों अंधा करें, आध पड़ा तो छानबीन करते हैं लड़का लड़की दूसरे, छानबीन करेंगे, कुंडली मिलाएंगे, और उसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ तय के गए कर गया या स्वयंवर हुआ करता था। तो गांधारी ने सुना तो पट्टी बांध, आजीवन पट्टी। सोचना वो गांधारी भी जो है अपने पतिदेव के साथ चली गई, और जा करके हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर, वहां जा करके और बताए गए तपस्या करने लगे भगवान का नाम। तो जब युधिष्ठिर महाराज जब वो लोग चले गए, तब विदुर जी भी सब चले गए, तब युधिष्ठिर महाराज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके तो भगवान के भक्त, तब अपने राज दरबार में आए। तो राज दरबार में सब, क्योंकि उनकी भी कुर्सी लगती थी, सिंहासन लगता था धृतराष्ट्र का भी, विदुर का सबका। तो जब महाराज युधिष्ठिर सभा में प्रवेश किए तो संजय तो उनके साथ ही रहते, उनके सचिव थे, साथ ही थे, तो उन्होंने संजय से पूछा कि सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन धृतराष्ट्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, विदुर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब संजय उनको समझाते हैं कि वो कल की रात ही जो है चुपचाप चले गए, वहां पे चले गए जंगल में साधना करने के, भक्ति करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु बड़े कोमल हृदय के थे, उनके अंदर उनका रहस्य हमने देखा कि महाभारत के युद्ध में भी वो बहुत हृदय रखते थे, छल कपट दांव पे सब उस पद से चल रहा था, उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो बड़े अब वो आत्मग्लानी करने लगे कि ये तो सब जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ। तो इस तरह से जब वो सोच रहे थे तब इनकी होती है किसकी, नारद जी की। अब नारद जी आते हैं, युधिष्ठिर महाराज को जब दुखा दुखी रहेगा तब नारद जी, जैसा कि आज के श्लोक में बताया गया है कि नारद जी भगवान की भक्ति असाधुओं की भक्तों की संगति का कितना असर पड़ता है, इस सबसे उत्तम उदाहरण कौन है, नारद जी। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि नारद जी शोध पुत्र थे, लेकिन उनकी जो मां थी वो साधु संतों भक्तों की सेवा करती थी, तो बचपन में वो भी भक्तों की साधुओं की सेवा करते थे, उनका जूठन प्रसाद खाते थे। इसका असर क्या होगा कि नारद जी क्या हो गए, भक्त बन गए। वही प्रभावदान की संगति का कितना असर पड़ता है, आप खुद सोचिए। यहाँ पे जितने भी आप लोग माता जी लोग आप लोग सब बैठे हो, अब आप ब्लैक फ्लैश में जाइए कि जब तक इस कान का कोई भक्त आपको नहीं मिला था या प्रभुपाद जी पुस्तक नहीं मिली थी, उसमें आपकी क्या स्थिति थी, सोचिए, पर कल्पना कीजिए। इस सब के साथ घटना हुई, सबके साथ घटना हुई है ना। आज हमारे माथे पर तिलक है, गले में कंठी माला है, जप कर रहे हैं, कितना उत्तम। सुबह उठते हैं 4 बजे, 3:30-4 बजे एक सिस्टम में आ गए, भक्ति सिस्टम में। लेकिन इसके पहले हम क्या थे, हमको खुद सबका अपना अपना अनुभव है। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी की पुस्तक मिली, कोई भक्त हमको मिला और जोड़ा, तो हमारे अंदर भक्ति जागृत हो गई। तो यही घटना नारद जी के साथ हुआ। और नारद जी तो ऐसे संत, जो भी मिला दक्ष प्रजाप्रता कितने शिष्य हजारों शिष्य पुत्रों से मिले, सबको भक्त बना दिया। जैसे हमारा इस्कान IYF क्या कर रहा है, आपका मंदिर पूना मंदिर सब कैसे यूथ को भक्त बना रहे हैं, अपना एसोसिएशन देकर थोक के भाव नारद जी भक्त बनाते थे। सोचने वाली बात, दक्ष को इतना गुस्सा आ गया कि हमारे इतने 10,000 पुत्रों को जो है सबको सब भक्त बना दिया, जबकि चाहते सब गृहस्थ बन करके और संतान उत्पन्न सृष्टि की सरसना करें, सबको उन्हें ब्रह्मचारी बना दिया। तो श्राप दे दिया कि आप एक पल से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते। लेकिन लव माव साधु संग सर सिद्ध है, अगर सच्चे भक्त की एक पल के लिए संगत मिल जाती है तो पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण कौन दिया, श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने अकेले जाकर के, याद करिए, अकेले प्रभुपाद जी गए 40-45 रुपए लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति हरिनाम लेकर के गए। और इसके बल पर अपना एसोसिएशन उन हिप्पियों को देख करके उनको हैप्पी बना दिया। एक चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया, जो नारद जी करते थे। हमारे प्रभुपाद जी भी इस धरती पर 14 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके अपना संग देकर कितना भक्त बना दिया। ये उदाहरण हम स्वयं देख रहे हैं, नारद जी तो कर ही रहे हैं, तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आंखों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से जितनी वर्तमान आचार्य गुरु महाराज जी लोग हैं, इस सब प्रभुपाद जी तो सिर्फ 108 मंदिर बना के गए थे, लेकिन सब भक्तों के प्रयास से 650 से ज्यादा मंदिर पूरे दुनिया में बन गया। किसका आशीर्वाद ये है। ये जो प्रसंग बताया गया, जिससे मैं समझना चाहिए कि किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, तो भक्तों की संगति में कितनी शक्ति होती है इसका अनुभव हमें खुद है, आप सब सबको इसका अनुभव है, चाहे मैं हूं कोई भी हो, सबको अपना अनुभव है। राधानाथ स्वामी महाराज जी का जो जर्नी होम पढ़िए पता चलता है, राइट। हमें तो सौभाग्य मिला महाराज जी के पुस्तक जब दिल्ली में लॉन्च हुआ था तो कितने वीआईपी को लाइन लगा दिया था उसके, पूरी मीडिया आई थी। फिर कुरमा ने कलकत्ता के भी जब लॉन्च हुआ था ग्रैंड हयात ओबराय में तो उसमें भी हम थे। ये सब प्रचार का असर है, कितना बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगत करने से ही परिवर्तन होता है। नर जियास उड़ रहे हैं और ऐसे कि किसी भी लोक में उसी शरीर से जा सकते हैं, ये भगवान की भक्ति से ही ऐसा संभव है। भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्तों की संगति में कितनी शक्ति है कि नारद जी वो चाहे कंस हो, रावण हो, राक्षस हो, सब उनका सम्मान करते थे, सबके साथ देवताओं के पास जहां चाहते जिससे मिलना चाहते थे उसके पास चले जाते थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेते थे। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन बोला है कि हमारे जो प्रचारक हैं भक्त हैं कभी कभी बिना अपॉइंटमेंट के भी जाना चाहिए, जैसे नारद जी आया करते थे और सब उनका आदर सम्मान करते थे। चेतन महापुरुष स्वयं अपनी टोली के साथ जब प्रचार कर रहे थे नदिया में तो वो क्या कर रहे थे, कोई अपॉइंटमेंट ले रहे थे, घर घर जा करके खटखटाते थे कि उसमें कालबेल नहीं हुआ करती थी, कालबेल नहीं हुआ करता था, खटखटाते थे तो कोई दरवाजा खोलता था अब बंद कर लेता था, अब कुछ स्वागत ही करते थे, कुछ खदेड़ देते थे, प्रसन्न जी जगाई मुदाई लोग को कीर्तन अच्छा नहीं लगता था, प्रसाद ही तो नहीं, तुम्हारे आचार में करके सब दिखाया है। इसीलिए प्रभुपाद के प्रचार ही सार है। यही जो बताया गया है कि हमें ये सब शिक्षा अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमारे आचार्यों ने सब ऐसा करके दिखाया। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्रचार प्रसार करिए जिसके अंदर जो क्वालिटी है, क्योंकि जिस आपके अंदर बोलने की, संगीत की, कलाकारी करने की, आप जो टैलेंट है जिसे टैलेंट कहते हैं, क्वालिटी है, गुण है, ये सब किसका दिया हुआ है, कृष्ण का दिया हुआ है। तो कृष्ण की ही सेवा में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, माता जी जप नहीं करना चाहिए, कथा के समय एक ही काम करना चाहिए, इसमें न आप जब ध्यान से सुन रहे हैं न जब कथा ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका मन एक ही है, एक समय एक ही जगह मन कंसंट्रेट होना चाहिए। ये शिक्षा सबके लिए है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्वयं वृंदावन में प्रवचन दे रहे थे किस बलराम हाल में, तो वहां पे भक्त लोग जब कथा में बैठे हैं न वो कथा सुन रहे हैं न जब सुन रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जब के समय हमको जब को ध्यान से सुनना है कि हम जब कर रहे हैं अटेंटिवली, और जब कथा तो सिर्फ कथा पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आपका मन एक ही है और मन को एक ही जगह नियंत्रित करना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि कथा के समय अगर कोई जप करता है तो तुरंत टोकना चाहिए ताकि दूसरे न करें, तो हमारे आदत है इसको, लेकिन किसको ठीक करेगा, हमको ही ठीक करना है, हम तभी ठीक करते जब हम खुद इसका पालन करेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखना चाहिए। लेडीज जो हार बनाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट से होता है, वो कर सकते हैं लेकिन वो कथा सुने और काम करते रहे, प्रजल्प न करें, क्योंकि जब चार लेडीज मिल जाती हैं तो प्रजल्प करते हैं, राइट, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कथा चले तो कथा सुनिए, कथा समय निकल जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। ये शिक्षा किस प्रभुपाद बताएं किसे सीखनी चाहिए? यशोदा मैया। यशोदा मैया जब मथानी से दही मथ रही थी तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाए हैं, वो क्या कर रहे थे कि जन्म से लेकर के तब तक जो लीलाएं भगवान कृष्ण किया था उसका उन लीलाओं को उन्होंने गीत बना लिया था और गीत गुनगुनाती थी। इसे जो हमारे वैष्णव भजन से है, वैष्णव भजन आपको नहीं याद है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, अर्थात सेवा भी करिए और भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान ने तो गीता के माध्यम से ये शिक्षा दी अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, असिव युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मेरा अश्वन करते ही युद्ध करना पड़ेगा। सोचने वाली बात कि तुम लड़ो, युद्ध करो, तीर चलाओ, लेकिन मेरा अश्वन करते हुए हम जो भी कार्य करें भगवान का नाम लेते हुए कर सकते। तो करके दिखाया, भगवान ने कराया अर्जुन से, बेटा युद्ध करो, माम अश्वन, मैं अश्वन करते हुए युद्ध करो, क्योंकि वास्तव में युद्ध कौन कर रहा है? कृष्ण ही कर रहे हैं। अब विश्व रूप दिखा दिया था कि इस सब पहले मारे जा चुके हैं, मैं तो तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, इतना तो करो। तुम कहते मैं साधु संन्यासी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसलिए धरती पर जो भी आता है कर्म करना ही पड़ता है। हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन टेम्पल नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। हमारे जो मंदिर है ये पागलों का आलसियों का अड्डा नहीं है। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना ही पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। वर्क स्मार्ट इज बेटर देन वर्क हार्ड, प्रभुपाद बोला करते। गधे की तरह मेहनत के साथ दिमाग से काम करो, कि दिमाग किसने दिया हुआ है? ठाकुर जी ने दिया हुआ है, और ठाकुर जी का दिया हुआ दिमाग ठाकुर जी की सेवा हम लगाइए, इंटेलिजेंस, तब इस संसार इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कंपल्सरी कर दिया मंगल आरती आना ही आना है। प्रभुपाद यहां तक कड़क, नो मंगल आरती, बोले इसके आगे, बोले ना बोले नो प्रसादम, ऐसा नहीं चलेगा, नो मंगल आरती प्रसाद पाना ही पाना, ऐसा नहीं। प्रभुपाद अगर आप प्रभुपाद जी फॉलो करते, प्रभुपाद जी कहते यू लव मी यू फॉलो मी, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो जो मैं कहता हूं करो, मेरी बात मानो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मंगल आरती नहीं आते तो जमीर तो यही कहते हैं कि आपको प्रसाद लेने का अधिकार नहीं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मंगल आरती में लोग कम दिखाई देते हैं और प्रसाद समय सब दिखाई देते हैं। हमारे इस काम में नियम बताया गया कि अगर किसी भक्त से मिलना हो तो आप सिर्फ प्रसादन के टाइम प्रसाद वहां चले जाइए, सब दिखाई देंगे। सत्य है, तो इसलिए यदि आप प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह 3:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम कथा तक स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना, तभी आप भक्ति में टिक सकते हैं, रह सकते हैं और आपके प्रचार का असर दिख सकता है। साधना और सिद्धांत और सेवा, ये तीन हमारा बेसिक है। आपकी साधना जितनी मजबूत होगी उतने सिद्धांत में आप मजबूत रहेंगे। जब सिद्धांत आप समझ गए तो साधना अपने आप मजबूत होती। तो साधना और सिद्धांत एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों होना चाहिए तभी सिक्का चलता है मार्केट में। सिर्फ फिलासफी देने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली तुम क्या करते हो, है नहीं? श्लोक याद करके प्रवचन झाड़ने के लिए नहीं होता, उसको आत्मसात करके प्रेत जीवन उतारने के लिए होता है। आप समझ गए ना? तो इसलिए साधना और सिद्धांत जब इसमें आप मजबूत होंगे तो सेवा आपकी स्वतः मजबूत हो जाएगी, क्योंकि साधना सिद्धांत और सेवा ये तीनों सकार हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी आप प्रभुपाद जी के संस्था में टिके रहेंगे अच्छी तरह से। और इन तीनों में से किसी कुछ गड़बड़ हुआ तो हमने खुद देखा है कितने लोग आए और चले भी जाते हैं, टिक नहीं पाते। उसका कारण यही है, उसका कारण और कुछ नहीं, बस यही है साधना, सिद्धांत और सेवा। इसलिए सुबह से लेकर के 9 बजे तक का जो है ये बहुत आवश्यक है, आप सबको करना चाहिए। तो नारद जी वही प्रभुपाद जी इसी चीज को समझा रहे हैं कि अतः उन्हें विचरण करने की संतान थी, हमें सिर्फ नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे दूसरे धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय पर उन्हें श्री नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतः जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हों उन्हें सर्वप्रथम धार्मिक बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करना होगा। आप चाहते हैं सब तो आपको धार्मिक होना पड़ेगा, और धर्म की शुरुआत किसे होती है, सुबह उठने से होती है। सारा शास्त्र ही कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3:30 बजे से लेकर के 6 सर्वोदय सूर्योदय के पहले का जो समय होता है, ये भक्ति के लिए और स्वास्थ्य के लिए। आयुर्वेद में बताया गया कि भक्ति और स्वास्थ्य के लिए सुबह का समय चाहिए, अमृत वेला कहेगा, सर्वोत्तम होता है, इससे उत्तम और कोई समय नहीं होता। और उसमें अगर कोई सोया है तो क्या भक्ति करेगा, सोचने वाली बात। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज सुबह उठते थे, भगवान राम स्वयं सुबह उठते थे, और सुबह उठ करके पहले जानते क्या करते थे भगवान, कौन बताएगा। भगवान सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते थे। आपके दादा परदादा पहले धरती पर चरण रखने से पहले किसको प्रणाम करते थे, पृथ्वी माता को, कि पृथ्वी भी क्या है, एक माता है, इसलिए पृथ्वी माता कहा गया। गो माता को तो बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, काउ प्रोडक्ट बेचा भी जा रहा है लेकिन सबसे पहले ओ माता जिस पे आप अपना पांव रखते हैं, चरण रखते हैं, उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, पांव रखने से पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा संस्कार है। भगवान ये करते थे, भगवान श्री राम फिर अपने माता और पिता को प्रणाम करते थे सुबह उठ करके, गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल तो माता पिता को अपने साथ कोई रखना ही नहीं चाहता तो प्रणाम क्या करेगा, राइट। तो उन माता पिता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके संयोग से हम इस धरती पर आए हैं। तो अपने माता पिता से कोई भी संतान उड़ नहीं हो सकती। ये नहीं सोचना चाहिए कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो रोते रहे और यहां पे हम माता जी करते रहे। अरे आपकी माता क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कभी सोचा है? उनको भी सोचना है कि उन्हीं के माध्यम से आप इस धरती पर आए। आपको सोचे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए जेल में ही पैदा हो गए, मथुरा की जेल में। बसदेव देवकी को जेल से कारा छुड़ाया, जब राजा बने तो द्वारका लेके गए। तो जब सब भगवान अपने माता पिता के लिए इतना कर सकते हैं तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री राम कोई भी आदर्श है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि हमारा तो उद्धार होगा ही और अपने परिवार का भी हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अगर आप भक्ति करते तो उनको भी माला पकड़ना चाहिए, उनको भी श्राम करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमें सबको सम्मान देने की आदत है। तो आप सबसे यह अनुरोध है कि जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद जी जिस तरह से प्रचार करके उसी तरह से हम भक्तों को प्रचार करना चाहिए, नारद जी की तरह सबके पास जाना चाहिए। ए पॉइंट मिले या न मिले जरूर जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर आप तहे दिल से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो प्रचार ही सार है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ। कोई प्रश्न है आप लोगों का? और माता जी कहाँ चले गए? ठीक यस। अब ध्यान रखे सब भक्तों, एक समय एक ही काम करना है। हाँ बोलिए।
धन्यवाद प्रभु, आपने जैसा बताया सिद्धांत और साधना दोनों किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम आपके आपके जीवन में भी देख रहे हैं किस तरह से आपने साधना को दृढ़ता से पकड़ के रखा है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कुछ समय बिताने के बाद वही मॉर्निंग प्रोग्राम, वही मंगल आरती, वही पूरा स्केड्यूल होता है, तो कई बार चलो थोड़ा थोड़ा ये जाके आराम कर लेते हैं या थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो मोनोटोनस होने लग जाता है कुछ दिनों के बाद। तो जितना उत्साह शुरू में रहता है वो बना नहीं रहता है कुछ समय के बाद।
इसका मैं समझ गया, नहीं इसका कारण ये है इन्वायरमेंट, आप समझेंगे ना। अब हमें उस समय का वातावरण में और हम खुद परिवर्तन देख रहे हैं कि संसार परिवर्तनशील होता है, है ना। जो दादा परदादा थे अब भी अंतर हो गया है, जो दूध दही घी आप शुद्ध पीते थे आज कहाँ मिल रहा है, राइट? सच है कि नहीं? डाइल्यूट होता चला जा रहा है। इसीलिए प्रभु बात कहती कभी कभी हमको दूध को क्या बॉयल करना चाहिए, आप सुनेंगे ना। तो हमें टाइप नहीं होना चाहिए कि राइट टाइम से, जैसे एक रूटीन चल रहा है मंगल आरती सब चल रहा है, अच्छा हमें रूटीन में नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर वही उत्साह, ये उत्साह स्वयं करना पड़ेगा, कोई आपका भरेगा नहीं। आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई, वो बदल गया, वो चीज अब नहीं रह गई है, अब चीजें बदल गई हैं। क्या सुने आप सुन के हम खुद परिवर्तन देख रहे हैं कि 40 साल हो गए संस्था में, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमें उसी तरह से उत्साह रहना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख आपको ही झेलना है, कोई साथ नहीं देता। यह समझाने ये फिलॉसफी समझिए, वास्तव में गीता का जो दूसरा अध्याय है मैं सब भक्तों में उसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी अज्ञानता है, मैं दो उदाहरण आपको दे सकता हूं, दो समझाए। सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि अगर हम आपसे पूछें या किसी पूछे कि साल में कुल कितने दिन होते हैं, तो जानते लोग क्या बताएंगे? 365 दिन होते। कितना बताएंगे? 365 दिन होते। सब जानते हैं कि दिन साथ ही होते हैं, दिन कितने होते हैं? साथी होते। आठवां दिन तो होता ही नहीं, आप नाम बताए आठवें दिन का क्या नाम है? संडे टू मंडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर मंडे, अर्थात दिन साथी होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? 365 दिन होते हैं, ऐसा नहीं है, यही अज्ञानता है। इसीलिए भागवतम सिर्फ 7 दिन परिचित बना सुने कि जानते हैं कि दिन साथी होते हैं, आठवां दिन तो होता ही नहीं। जितने संसार के लोग हैं इन्हीं 7 दिन में उनको भी शरीर छोड़ना है कि दिन साथी होते हैं, कितनी बड़ी अज्ञानता है। और लोग कहते हैं पढ़े लिखे खाक पढ़े लिखे हो, इतना ही नहीं मानो कि दिन तो साथी होते हैं, यही 7 दिन हम रिपीट होते रहते हैं, आप समझेंगे ना। तो कैलकुलेट करके सिस्टम ढंग से चले इसके लिए इस सिस्टम बना दिया, इतने दिन का फिर वही रिपीट हो रहा था बनाया गया। लेकिन वास्तव में जो ओरिजिनली दिन कितने होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिन में परीक्षित महाराज मरे थे, धृतराष्ट्र जितने राजा महाराजा सब मरे थे, हम सबको इन्हीं 7 दिन को अंदर ही मरना है कि 8वां दिन तो होता ही नहीं। तो इसलिए नित्यम भागवत 7 दिन हमें श्री भागवतम का क्या करना चाहिए? नित्य सेवन करना चाहिए। ये अज्ञानता समझ हमें दूर करनी है। और दूसरा, इस समय आप हमें देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, जानते हैं रहस्य क्या है कि हम किससे देखते हैं? आंखों से, राइट? लेकिन ये ध्यान, ये अज्ञानता दूर कर लीजिए कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। एक गीता कहती है, फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत समझे, सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत है कि आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से मैं देखता हूं, और मैं कौन हूं, आत्मा हूं। ये तब आप महसूस करेंगे जब मुर्दा शरीर आपके सामने पड़ा रहता है, आंखें होते भी आंखें नहीं देख रही हैं, कान होते भी मुर्दे को सुनाई नहीं दे रहा है, नाक होते भी सांस नहीं खींच रहा है। क्यों? क्योंकि जो देखने वाला था, सुनने वाला था, बात करने वाला था, सांस खींचने निकालने वाला था, वो तो है ही नहीं शरीर में। ओ मैं हूं आत्मा, तो मैं देखता हूं, ये आंखें से माध्यम है। तो इस संसार में जब जीव आता है तो फिलॉसफी मारिए क्या कहती, दूसरा अध्याय कहता है कि हम भोगने के लिए आते हैं, अब भोगने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए, कि शरीर के माध्यम से हम भोगते हैं। और जब शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाती तो भगवान गीता में क्या समझाई, तो समझाते हैं कि जिस तरह से अर्जुन कोई मनुष्य जीर्ण शीर्ण फटा पुराना वस्त्र त्याग करके नया बधान करता है, उसी प्रकार से तुम्हारी तुम हो आत्मा है। आत्मा जब देखती है कि वह शरीर बेकार हो गई, यूजलेस हो गई है, बूढ़ी हो गई, वृद्ध, कुछ भोग नहीं कर सकती, तो उसको छोड़ करके नए शरीर में चलते, क्योंकि आत्मा का शाश्वत स्वभाव है आनंद लेना। और आनंद लेने के संसार में आता है, शरीर को साथ लेकर आता है, कि आत्मा को मालूम है शरीर के माध्यम से हम सुख भोगेंगे। और जब ये शरीर बेकार हो जाती है, नए शरीर प्रवेश कर जाती है। तो हर का सिद्धांत है ये यूज एंड थ्रो, यूज करो फिंगर, ये हर आत्मा का यही नेचर है कि जब तक आप शरीर स्वस्थ लेके वो यूज करेगी आपको, यूजलेस हो गई तो आपको छोड़ देगी, समझ गए। तो हर व्यक्ति जो है यूज एंड थ्रो की फिलॉसफी करता है, यूटिलाइज करो छोड़ दो, इस शाश्वत स्वभाव है हमारा, आप जान लीजिए। एक गीता समझाती है हमको, इस ढंग से समझिए चीज क्या है। तो जब ये चीज समझ आ जाएगी तब भगवत राम का रास्ता खुलेगा। कि पहले हम ये तो समझें कि हम किस तरह से, पहले इसीलिए भगवान इतने बुद्धिमान हैं, बहुत सारी बातें याद है। भगवान जो बात करते हैं हम सब जानते हैं, तन से मन से धन से भगवान की सेवा होती है, क्या से, क्या बोलते हैं, तन मन धन से। लेकिन भगवान न तन की बात करते हैं न धन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मन की बात करते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भो, अपना मन में लगाओ, वो नहीं बोले कि तन तनाव हो धन धनाव हो, है नहीं, हम धन के लिए पीछे दर। भगवान का मन, भगवान जानते हैं कि अगर मन जब तक किसका मेरे में नहीं लगेगा सेवा क्या करेगा, इसलिए पहले मन लगाइए भगवान पर। जब मन लग जाएगा भगवान में तब आप शरीर से सेवा करना शुरू, तन लग जाएगा, और जब तन और मन एक हो जाते तो तन्मय व्यक्ति हो जाता है, फिर धन लगाता है, धन का तीसरा स्थान आता है ना। आप सुनिए, जैसे प्रेमी प्रेम क्या है, पहले दोनों का मन मिलता है, फिर तन मिलता है, और जब तन मन मिल गया तो धन लगाना शुरू कर देते हैं, राइट। हमारे प्रिय कौन है, कृष्ण है, एकमात्र पुरुष कौन है, कृष्ण है, बाकी हम सब क्या प्रकृति हैं। तो पहले उनके पर मेरा मन तो लगे, इसलिए भगवान मन की बात करते हैं कि इसका अगर मन नहीं लगेगा तो तन से धन से क्या सेवा करेगा, तो बेटा पहले मन लगाओ। अब मन तभी लगेगा जब अटेंटिवली चांटिंग करेंगे, जब करेंगे साधना को मजबूत करेंगे, मन भागेगा, भागने नहीं देंगे, तब जब मन लग गया तब तो आनंद ही आनंद है। आप सुनिए, बहुत सारी चीजें।
हरे कृष्णम, बहुत अच्छा आपने भागवतम क्लास दिया है, जबकि मतलब महाभारत का और बहुत अच्छा तरीके से स्पष्टीकरण किया,
तो यहाँ भागवतम में जब आता है, अभी ये लास्ट लोक है, तो धृतराष्ट्र जो थे कि जहां महाराज युधिष्ठिर के यहां मतलब रह रहे थे, और विदुर जो आए, विदुर जी ने उनको समझाया, जैसा आपने लेक्चर में बताया कि भीम द्वारा जो दुष्टिष्ट आप खा रहे हैं और आप तो घर छोड़ देना चाहें, तो ये जो स्थिति जो है कि हम सब जीवात्मा की वही स्थिति है कि हम भी अपने मतलब घर गृहस्थ में पड़े हैं, और जबकि हमको मालूम है कि हमको भगवत धाम जाना है, लेकिन भगवत धाम जाना है जब सुनते हैं तो लगता है कि वो
तो प्रश्न क्या है, प्रश्न
ये है तो क्यों नहीं हमारा मन भी मतलब विदुर जी जैसा मतलब भगवान के चरणों में लगता नहीं।
ऐसा है कि हमें जितना प्रभुपाद दिए हैं अगर उतना ही कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं तुम्हें अपने आप हम पिकअप कर लूंगा। वास्तव में इस कलयुग में ये उस समय की बात है, द्वापर युग की बात है, और सब युगों में कलयुग सबसे उत्तम युग है, पता है? इसलिए कि गीता में जब भगवान कहते हैं कि मैं ही इस धरती पर उतार लेता हूं संभव युग के, सबसे ज्यादा स्थिति थी सतयुग में, सबसे ज्यादा भगवान को उतार लेना पड़ा सतयुग में, क्योंकि जितनी लड़ाइयां सतयुग में हुई थी बाकी युग में नहीं हुई थी। तब बार बार राक्षस आते थे, भगवान को प्रकट होना पड़ता था, प्रहलाद महाराज के पिताजी को मारने के लिए भगवान को सतयुग वाला पड़ा, सोच सकते हैं। फिर आया त्रेता युग में, रावण का अहंकार बढ़ा, द्वापर में कंस आए, इन तीनों में भयंकर से भयंकर राक्षस आए, अब भगवान को उतार लेना पड़ा। कलयुग में स्थिति अच्छी है कि देवता भी अपना आराम से फरमा रहे, काम कर रहे हैं, नीचे के जो भक्त समाज है मनुष्य समाज वो भी है, कम कितने भयंकर राक्षस तो नहीं आए, नहीं तो उस तीनों युग में ऐसे से राक्षस आए कि देवताओं को भागना पड़ता था, मनुष्यों की क्या स्थिति थी उनका तो भूल ही जाइए। कलयुग इसलिए अच्छा है कि इसमें देवता भी मस्त हैं, अपने काम लगे हैं, और हम भी मस्त हैं, इसीलिए भगवान स्वयं नग आकर के हरिनाम के रूप में आए, काले काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि भगवान आए, ये सारा काम किससे होगा, हरिनाम से होगा। इसीलिए स्वयं कृष्ण जो है धरती पर भक्ति के रूप के भक्ता अवतार के रूप में आए, इस करुणा से और हरिनाम से सब जीवों का हम उद्धार कर सकते हैं कि स्थिति इतनी भयानक नहीं है, राइट? तो हरिनाम, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं, और प्रभुपाद हरिनाम से भगवान का प्रसाद खिला करके और फिलासफी को समझा करके पूरे दुनिया को बदल दिया। हाँ बोलिए। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं? देखो आसुर प्रवृत्तियां तो हर इंसान में है, किसमें आसुर प्रवृत्ति नहीं है? रावण विद्वान था, पंडित था, सब कुछ था, लेकिन आसुर प्रवृत्ति तो राक्षस कला है। लेकिन आजकल तो आप तो बंबई जैसे शहर में हैं, निशासुर का मतलब होता है जो रात में चलता है, और जितने निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, मांसाहारी हैं, नशा करने वाले लोग हैं, ये रात में ही निकलते हैं क्लबों में, है नहीं? निशाचर प्रवृत्ति। मैं तभी जुहू मंदिर में था तो हम सुबह 3:30-4 बजे जब मैं उड़कर था तो किसी क्लब से बड़ी भीड़ से लोग निकल रहे थे, तो मैं डर पता भैया क्या है, कहे कि प्रभु जी ये रात को 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक क्लबों में ये सब चलते हैं, अब जाएंगे और 2 बजे तक सोएंगे, ये सब निशाचर प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। आप सुनिए ना, ऐसी प्रवृत्ति की ज्यादा है ये जो आतंकवाद ये सब जितने भी है, लेकिन रावण और कंस जितने बड़े बड़े भयानक लोग आए, अभी इतना बड़ा आजकल रावण जैसा आतंकी इस धरती पर भी कोई नहीं हुआ। रावण से धरती हिल रही थी, सूर्य की रोशनी फीकी पड़ जाती थी, हनुमान जी के पिताजी रुकना बंद कर देते थे, इसे कहते हैं तब भगवान को आना पड़ता है। जब कलयुग में का लक्षण बताया गया है 12 स्कंद है, जब इस भयानक से स्थितियां आएंगे तब भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, और तब तक आप सब लोग हरिनाम से काम चलाओ। ठीक है, भगवान आएंगे सही वक्त पे, सही चोट करेंगे, उनको पता है कब आना है, राइट। इसीलिए अभी हम हरिनाम का युग चल रहा है, चेतन महाप्रयुग चल रहा है, इस हरि के महाम से हम सबको दूर कर सकते हैं, राजसी प्रवृत्ति दूर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं पहले ये भी कुछ मांसाहार कर रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, गांज भागा खा रहे होंगे, राइट, प्रवृत्ति, ये सब प्रवृत्ति, लेकिन प्रभुपाद जी ने के संपर्क में आते ही सब छूट गया, राइट। प्रवृत्ति बदली कि नहीं बदली, तो बदलती है संधि करके, इसलिए सब ठीक हो जाएगा अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गंतरा सिंभागोतम की। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना प्रेरणादायी सत्र दिया यहाँ पर। तो आइए हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का, तीन बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हित के स्वजेंद्र नंदन प्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम, राम।